ओम शांति। संसार के अंदर दो बातों की गुह्य गति मानी जाती है, एक है समय की गुह्य गति और दूसरी है कर्मों की गुह्य गति। ये दोनों गुह्य गति को समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन के अंदर कई उलझनें आती है और उस उलझन के समय मनुष्य कई प्रकार के मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न कर लेता है और उसके साथ ही जब उन प्रश्नों का जवाब नहीं प्राप्त होता है तो टेंशन में आ जाता है, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है और कभी कभी तो भगवान के ऊपर भी वो गुस्से में आ जाता है और बार बार उसके मन के अंदर एक ही प्रश्न उत्पन्न होता रहता है कि मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और उसका जवाब मिलता है और जब नहीं मिलता है तो मनुष्य गुस्से में आकर के कभी कभी गलत दिशा की ओर बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी का जो सत्र है वो हमारे मन के कई उलझनों को सुलझाते हैं, परंतु तब जबकि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की विधि आ जाए। ज्ञान इंसान के पास होता है लेकिन अगर उस ज्ञान को अप्लाई न करो, उसका प्रयोग जीवन में न करो तो फायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं। ज्ञान होते हुए भी दुख की अनुभूति करता है और इसलिए समय की गुह्य गति को समझना अति आवश्यक है। समय के विषय में दुनिया में बहुत कुछ कहा हुआ है। ये कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। वास्तव में समय हमसे समय प्रति समय एक प्रति उत्तर की मांग करता है और समय के हिसाब से अगर हमने प्रति उत्तर दिया तो समय हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ा देता है, परंतु अगर हम समय से विपरीत दिशा की ओर चले तो समय बड़ा कठोर भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है If you cannot change according to time, time will force you to change. जितना तीव्र परिवर्तन का समय चल रहा है, इस तीव्र परिवर्तन के समय के साथ समय हमसे भी एक परिवर्तन की चाह रखता है और समय के अनुकूल अगर परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय हमें परिवर्तन होने के लिए मजबूर कर देगा और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की और समय की मजबूरी है, परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक है। फिर भी अगर परिवर्तन को नहीं अपनाया, फिर भी व्यक्ति ने समझा नहीं कि समय ने क्या परिवर्तन की चाह रखी है, तो लोग क्या कहते हैं, इसको कोई नहीं सुधार सकता है, जब समय की पछाड़े खाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा। यानी समय फिर अच्छे अच्छे को पछाड़ना शुरू करता है और कभी कभी इस विधि में समय उसके अस्तित्व को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल किल यू। समय आपके अस्तित्व को नष्ट कर देगा। इसलिए समय की गुह्य गति क्या कह रही है, किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा हमसे रखती है, वो परिवर्तन को हमें स्वीकारना होगा और उसको स्वीकारते हुए उसको जीवन में धारण करने के लिए कोई न कोई विधि अपनानी होगी, तब वो समय हमें आगे बढ़ा देता है। नहीं तो समय का पंछी उड़ता जाता है, वो कभी किसी के हाथ नहीं आता है। और समय बीत जाने के बाद अगर महसूस भी किया कि अरे ऐसा करना चाहिए था तो अच्छा होता था, लेकिन क्या फायदा। समय के साथ साथ इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है। इसीलिए कहा जाता कि परिवर्तन कुदरत का एक नियम है। परिवर्तन होता आया है और होता ही रहेगा। कोई घड़ी ऐसी नहीं है जो परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इसलिए समय यही सिग्नल दे रहा है, संकेत दे रहा है हमें भी, कि हमें भी परिवर्तन की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाना होगा समझदारी के साथ। आज इसीलिए दुनिया में मैनेजमेंट में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर हो गया तो वो है टाइम मैनेजमेंट। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं और उसके लिए कई टिप्स दी जाती है कि सुबह जल्दी उठ करके सारे दिन का प्लानिंग करना चाहिए कि आज मुझे कौन से मुख्य मुख्य कार्य करने हैं, और उस अनुसार प्रायोरिटी को सबसे पहला रखते हुए फिर एक एक कार्य करते जाओ तो मैक्सिमम समय का सदुपयोग होगा। लेकिन अनुभव यही कहता है कि जिस दिन ऐसा प्लानिंग किया, दिन आरंभ होता है, हमने एक दो कार्य किए भी, संपन्न किए, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके विषय में कभी सोचा भी नहीं था और उसमें लग जाते हैं और सारा दिन उसी में निकल जाता है। दिन के अंत में हम वो लिस्ट को देख करके सोचते हैं, आज फिर एक दिन ऐसा ही चला गया। तो एक एक दिन हमारे निकलते जा रहे हैं। इसलिए समय की गुह्य गति को समझना है। समय एक चक्र में चलता है, इसीलिए उसको कहते हैं काल चक्र। और समय के साथ हर चीज भी एक चक्र में ही चलती रहती है। जैसे दिन और रात का चक्र नित्य चलता रहता है, इसी तरह ऋतुओं का चक्र भी नित्य चलता रहता है। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनः जन्म का चक्र भी नित्य चलता रहता है। और कुदरत की साइकिल को भी देखो तो पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी समुद्र के अंदर मिल जाता है। तो हर चीज एक चक्र में चल रही है इस संसार में। इसी तरह ये समय का भी चक्र है। चक्र क्यों कहा? क्योंकि जिसकी आदि और अंत नहीं है, अनादि है। दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ था? रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे, 6 बजे कब शुरू हुआ मालूम नहीं। कब पूरा होगा ये भी नहीं पता। लेकिन हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र की भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह आती है। इसी तरह ऋतुओं के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनः जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। ठीक इसी प्रकार ये काल चक्र में भी चार अवस्था है जिसको कहा जाता सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सत्ययुग आएगा। ये नहीं कि ये पृथ्वी पर एक प्रलय हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये समय का चक्र चलता ही रहता है। परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। लेकिन तब कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सत्ययुग में कैसे बदल जाएगा, कोई व्यक्ति का काम नहीं है उसको बदलना। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदल जाती है, कोई सारी रात भी बैठे देखने के लिए कि ये भोर कैसे निकलती है, पता ही नहीं चलता है भोर कहाँ निकल आती है। कुदरत की सेटिंग इस प्रकार से बनी हुई है कि घोर अंधेरी अमावस्या की रात भी सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई चाहे या न चाहे। इसी प्रकार घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सत्ययुग में अपने आप बदलता है, कोई इंसान का काम नहीं है। कुदरत के परिवर्तन की प्रक्रिया इस प्रकार चल रही है जो अपने आप सुनहरा सत्ययुग आना ही है, क्योंकि ये चक्र है। लेकिन एक महान परिवर्तन से ये सृष्टि गुजर रही है और इसलिए समय भी हमसे एक महान परिवर्तन की ही अपेक्षा रख रहा है। हर चक्र को एक अवधि जरूर है, जिस अवधि में ही उसको वो चक्र कंप्लीट करना होता है। जैसे दिन और रात का चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में ही उसको वो चारों अवस्था से गुजरना पड़ता है। इसी तरह ऋतुओं का चक्र, उसकी अवधि है एक साल। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। लेकिन ये 5000 साल जब सुनते हैं ना, तो कई लोगों के मन के अंदर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। 5000 कहां से आया, किसने कहा 5000 साल, कहां लिखा हुआ है? शास्त्रों में तो लाखों साल लिख दिए, तो क्या शास्त्र गलत है? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं और तब मनुष्य कभी कभी ये भी कह देता है, क्या सबूत है आपके पास कि 5000 साल का चक्र है? वैसे अगर एक सवाल हम पूछे, 24 घंटे का क्या सबूत है? 24 घंटे कहां से आए, किसने बनाए, क्यों बनाए, अनेक प्रश्न आ सकते हैं। वहां तो हमने प्रश्न नहीं किया ना कि 24 घंटा ही क्यों, 20 घंटा क्यों नहीं, या 25 घंटा क्यों नहीं। अब जिसने भी कैलकुलेट किया, जिस भी आधार पर ये कैलकुलेशन किया, 60 सेकंड की एक मिनट बनाई और 60 मिनट का एक घंटा बना और ऐसे 24 घंटे बन गए। लेकिन अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे, 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे, तो नहीं चलता था, घंटे कम होते थे, ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था दिन और रात का। चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, चाहे उसको 20 घंटे में बांटो या 25 घंटे में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था ना। लेकिन हमने कभी कोई सबूत मांगा, स्वीकार कर लिया और 24 घंटे के हिसाब से हमने अपने जीवन को ढाल लिया। ठीक इसी प्रकार साल का चक्र है 365 दिन का। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को चक्कर लगाने में। और इसीलिए एक साल का चक्र है 365 दिन। और इस तरह से सारा इंग्लिश कैलेंडर बन गया। लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर को ले तो साल में कितने दिन होते? तीन साल के बाद अगर अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन होंगे? 354 दिन। अभी 354 सही है, 365 सही है, कौन सा सही है? क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी जो बना है एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस कि जिसने सारे विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेशन करने के लिए, जिससे इंग्लिश कैलेंडर भी बना या वो विज्ञान की भी खोजे हुई, तो उस जमाने की साइंस भी कोई कम थोड़ी थी, बहुत पावरफुल साइंस थी। आज भी जब ये बताया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कि अधिक मास है इसलिए बरसात एक मास पीछे से आरंभ होगी, बराबर एक्यूरेट अपने टाइम पर आती है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो कौन सा एक्यूरेट हुआ? हिंदू कैलेंडर। लेकिन फिर भी हम दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि मॉडर्न साइंस ने कहा है 365 दिन इसलिए अब हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं, दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर चला रहे हैं और अपना त्योहार मुहूर्त जो कुछ भी निकालना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं ना, किसी को फाड़ के फेंक तो नहीं दिया ना, न किसी ने प्रश्न किया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, स्वीकार कर लिया। कई चीजें ऐसी होती है इस दुनिया के अंदर जिसका प्रश्न नहीं किया जाता है। ठीक इसी प्रकार ये 5000 कहां से आए, जहां से 24 घंटे आए, जहां से 354 365 आए, वहीं से 5000 भी आए। अगर उसको स्वीकार कर सकते तो इसको क्यों नहीं। वैसे 5000 साल का वर्णन हर शास्त्रों में किया गया है, हर धर्म में किया गया है। सिर्फ उस बात को हमें रिलेट करना आया नहीं प्रेजेंट समय के साथ। हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए, कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत में अंतिम चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या है? महाभारत चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, तो महाभारत काल फिर से आ गया ना, तो 5000 साल हो गए ना। महाभारत के अंदर जो पात्र दर्शाए हुए हैं, शकुनी जैसा पात्र आज के समाज में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हाँ, बहुत है। हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा कि नहीं? महाभारत के अंदर दुर्योधन जैसे जो पात्र दर्शाए हुए हैं, दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज के अंदर देखने को मिलते हैं जो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं हा? और उसके बावजूद भी पुत्र मोह में अंधे मात पिता आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं कि नहीं हा? तो ऐसे माँ बाप भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो महाभारत काल फिर से आ गया ना, तो 5000 साल हो गया ना। मुसलमान धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय अब आ रहा है, तो 5000 हो गया ना। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाता है क्राइस्ट के 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो 5000 हो गया ना। तो हर धर्म के हिसाब से 5000 का वर्णन अवश्य है, सिर्फ उस बात को हम समझ नहीं पाए। लेकिन तब कई बार कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो दिखाते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है वो कैसे हुआ? अरे पत्थर तो करोड़ों साल पुराने मिलेंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल के काल चक्र इस पृथ्वी पर कितनी बार घूम चुके हैं? असंख्य बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, तो पत्थर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे दिन और रात का चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे 24 घंटे के चक्र इस पृथ्वी पर कितनी बार घूम चुके हैं? 2007 साल से हम गिनती करते आए, लेकिन उसके पहले भी तो घूमे हैं या नहीं घूमे? तो इसी तरह ये 5000 साल का चक्र इस पृथ्वी पर अनगिनत बार घूम चुके हैं, तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, और उसमें पत्थर मिलना कोई बड़ी बात नहीं। ये 5000 साल का चक्र कैसे चलता है? उसी को अगर देखा जाए तो इसको दिखाया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता, लेकिन अगर उसको किसी को भी पूछा जाए कि स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो क्या कहेंगे? एक शुभ की निशानी है, हमारे पूर्वज ने लगाई इसलिए हमें लगाना है। अब यही स्वास्तिका सही है ये किसने कहा? तो कहते ये तो हमारे पूर्वज करते थे ना, इसीलिए करना है। वास्तव में देखा जाए तो हिटलर भी स्वास्तिका में बहुत मानता था, परंतु वो उल्टा निकालता था। वो उसको सुल्टा कहता था और भारतवासी इसको सुल्टा कहते। अब सही कौन सा है? तब भारतवासी कहते हैं कि उसने उल्टा निकाला ना, इसीलिए उसका सत्यानाश हो गया, इसीलिए ये सुल्टा है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। कोई भी निशानी अगर है तो इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा कि नहीं होगा? तो स्वास्तिक का शब्द सुअस्ति शब्द से निकला है संस्कृत के। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की एक घड़ी भी ऐसी नहीं है जिसको हम कहे अशुभ है, हर घड़ी शुभ है। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता के सार में ये बात कही हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, क्यों चिंता करते? कोई घड़ी बुरी है ही नहीं, हर घड़ी अच्छे से अच्छी है ही है। जो बीत चुकी वो भी अच्छी है, जो चल रही है वो भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। बुरा कहना ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, इसलिए हम कहते ये तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वास्तव में बुरा कुछ है ही नहीं। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे जिनका कार एक्सीडेंट हुआ था, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे। तो जब हमें पता चला तो सोचा चलो उसको मिलके आते हैं। जब मिलने गए तो क्या कहेंगे? सहानुभूति के कुछ शब्द कहेंगे। तो उस भाई से कहा हमने, भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही भगवान का नाम लिया, उस भाई को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा भगवान का नाम मेरे सामने नहीं लो, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करते। और इतना भगवान के नाम से गाली देने लगे, बार बार यही कह रहे थे मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब उसका तो कोई जवाब ही नहीं था, क्या जवाब देते? कहने लगे, बहन जी मैंने कर्म किए, अच्छे से अच्छे कर्म किए, लेकिन फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल छीन लिया, इसलिए भगवान बहुत बुरा है। हमें पता नहीं था वो किस संदर्भ में बात कर रहे थे। आखिर हमें महसूस होने लगा जितना ज्यादा देर यहाँ खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, बेहतर यही है बाहर निकल जाए। बाहर आ गए तो उसकी वाइफ आकर हमसे कहने लगी, बहन जी अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना, इस वक्त आप इनके मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। हमने कहा इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाले, और आज एक एक्सीडेंट क्या हुआ और इतना भगवान को गाली देने लगे? तो उसकी वाइफ ने कहा ऐसी बात नहीं है। क्या बात है फिर? तो बताने लगी कि वो कोई लायंस का या रोटरी का प्रेसिडेंट था, गवर्नर था, और उसने अपने टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया था। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है, और जब उनका टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होगी, तो उसको भी उस गैदरिंग में जाना था, और क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था इसलिए वहां उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब जा तो नहीं सकता है 10 दिन के अंदर ठीक होकर के, तो इसलिए बार बार जब वो सोचता था कि इतने बड़े बड़े लोग वहां आए होंगे, उन सबके बीच में मेरा सम्मान होता था, अवार्ड मिलता था, मेरी फोटो निकलते थे, वहां से जब मैं इंडिया आता था वापस तो कैसे यहाँ मुझे रिसीव किया जाता था, कितना सम्मान मेरा होता था, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार जब वो सोचता था कि इतने बड़े बड़े लोग वहां आए होंगे, उन सबके बीच में मेरा सम्मान होता था, अवार्ड मिलता था, मेरी फोटो निकलते थे, वहां से जब मैं इंडिया आता था वापस तो कैसे यहाँ मुझे रिसीव किया जाता था, कितना सम्मान मेरा होता था, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इसलिए उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी। तब वो बार बार कह रहा था कि मैंने कर्म किया और फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल छीन लिया, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, अरे भगवान को क्यों गाली देता है, कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आ गया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूँ, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकते थे, पहले ही लेना था, अब क्या कहेंगे उसको? आखिर 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था तो हमने सोचा चलो हो सकता है भाई की तबीयत ठीक हुई हो तो मिलके आते हैं। तो इसीलिए हम फिर से गए बाबा का भोग लेकर के, तो भाई बड़े खुश मिजाज में बैठे थे, जैसे ही हमें देखा कहने लगे आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छाई करता है। क्या हुआ? तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए, है ना? और फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा कि देखो भगवान कितना अच्छा है, भगवान कितना अच्छा है कि अवार्ड तो मुझे मिलना ही नहीं था लेकिन जीवन भी चली जाती थी, उसी फ्लाइट में मैं होता था तो मर जाता था, लेकिन भगवान ने एक छोटा सा एक्सीडेंट करके मुझे रोक लिया और रोक करके एक नया जीवन दान दे दिया। अब इससे बड़ा सम्मान मेरा और क्या हो सकता है जो भगवान ने मुझे नया जीवन दान दे दिया, है ना? इसलिए बहन जी जो हुआ अच्छा हुआ, ये बहुत बड़ा फल है मेरे कर्मों के लिए। और फिर कहने लगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। कहने का भावार्थ कि जब भी जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हो तो ये प्रश्न जो मन के अंदर आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर है क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता था और बड़े स्वरूप से भोगना भोगनी पड़ती थी। ये तो कुछ भी नहीं है। तब कहा जाता, सूली से कांटा और कांटे से भी फूल बन गया, ये तो कुछ नहीं है। तो इसलिए अब जवाब मिला तो अब तो दुखी नहीं होंगे, अब तो भगवान पर गुस्सा नहीं करेंगे ना, अब तो बार बार ये मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो जवाब मिल गया ना। लेकिन तब भी कई बार कई लोग कहते, नहीं बहन जी, कभी कभी तो कोई ऐसी घटनाएं घटती है। अरे जिस व्यक्ति को हम जानते पहचानते नहीं, वो भी आकर हमसे बुरा व्यवहार करके चले जाते हैं, उसको कैसा अच्छा समझे हम। तो मुझे याद आता है कि एक बार बॉम्बे में हमारा प्रोग्राम था और प्रोग्राम हमारा दोपहर को 3 से 5 था, शाम का समय हमारा फ्री था। तो एक परिवार वाले आकर हमसे कहने लगे, बहन जी अगर शाम के समय फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हम आपका एक प्रवचन रखना चाहते हैं, 7 से 8 बजे प्रवचन रखे। तो मैंने कहा, शाम को तो कोई और प्रोग्राम तो है नहीं, भले आपको रखना है तो रखो। तो उन्होंने बड़े खुशी से गए वहां से। अब जहां हमारा प्रोग्राम था 3 से 5, प्रोग्राम के बाद कुछ प्रश्न उत्तर चले, कुछ लोगों से मिलना करना हुआ, तो 5:30-6 हो गए। तो जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी, बहन जी अब अगर हम सेंटर पर जाएंगे और उसके बाद उनके घर जाएंगे तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है और हम 7 बजे भी पहुंचेंगे नहीं अगर कहीं ट्रैफिक में अटक गए तो। हमने कहा फिर क्या करना चाहिए, कहा यहां से सीधा चलते हैं। हमने पूछे यहां से कितना दूर है, कहा बस 10 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे हम। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, वो परिवार बहुत अच्छा परिवार है, अगर हम जल्दी भी पहुंच गए तो बुरा नहीं मानेंगे, अच्छी बात है चलो। तो गए तो 6 बजे में हम पहुंच गए। अब उन्होंने इतना जल्दी हमको एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जब हम पहुंचे तो सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, है ना। तो जैसे ही हम गए तो माँ बाप ने बच्चों को इशारा किया कि टीवी बंद करो, तो बच्चों ने इशारा किया हम बंद करने वाले नहीं है, है ना, हमने देख लिया। फिर जो है माँ बाप ने कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो, तो बच्चों ने मान लिया, वॉल्यूम स्लो किया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी भी चल रही थी, वहां बच्चों को वॉल्यूम स्लो करने लिए कहा और यहीं बैठ करके माँ बाप हमसे बातें करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम, क्या हुआ आदि आदि पूछने लगे। अब जरूर उनको डिस्टर्ब तो होगा, तो उनका जो छोटा बेटा था 12-13 साल का होगा, वो आकर के मुझे कहने लगा कि दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना। बड़ी सभ्यता के साथ उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए, मुझे भी हंसी आ गई। फिर वो बच्चा अपने आप बताने लगा और कहने लगा, दीदी ऐसा ही सीरियल बहुत अच्छी चल रही है और हम उसको मिस करना नहीं चाहते क्योंकि आज इसका लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड में कई सस्पेंस खुलने वाले हैं और उसके बाद तो वो सीरियल खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम आज ये सीरियल एपिसोड जो है मिस करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब साइलेंस में बैठना है तो क्या करेंगे। तो मैंने सोचा देखे तो सही उसका क्या सस्पेंस खुल रहा है, तो मैं भी देखने लगी। अब एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, कुछ स्टोरी जैसा भी नहीं लग रहा था, क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और पता नहीं उनका क्या सस्पेंस खुलता था जो वो खुश हो जाते थे और कहने लगते थे वाह बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। अब क्या अच्छा दिखाया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया है ना, लेकिन बड़े खुश हो रहे थे। लास्ट में एंडिंग भी कोई खास नहीं थी लेकिन बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया, कहने लगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था। एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, कुछ स्टोरी जैसा भी नहीं लग रहा था, स्टोरी क्या चल रही है वो भी पता नहीं, इसमें क्या अच्छा लगा। तो वो बच्चा मुझे कहने लगा दीदी ऐसा है आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना इसलिए आपको कनेक्शन समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे है ना इसलिए हमको कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और इसलिए वो सस्पेंस को भी हम समझते थे और इसीलिए हमको बड़ा अच्छा लगा। वो तो इतना बोल करके निकल गया लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया कि ये 5000 साल का जो काल चक्र है उसमें हमारे भी कितने जन्म है, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। अब ये कलयुग का अंतिम समय तो लास्ट एपिसोड चल रहा है, अब लास्ट एपिसोड में तो सारे सस्पेंस ही होंगे कि नहीं होंगे। जीवन में स्टोरी जैसा भी कुछ भी नहीं लग रहा है, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, वो ऐसा व्यवहार आके करके जाता है और हमको लगता है क्या मतलब आया, ये बिना मतलब गाली दे के क्यों गया। लेकिन क्योंकि हम भी सारे एपिसोड नहीं जानते हैं इसलिए हम बड़े दुखी हो जाते, गुस्से में आ जाते, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे तो हम भी क्या करते थे, ताली बजाकर यही कहते थे वाह बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा, यही कहते थे ना। तो इसीलिए कहने का भावार्थ ये है कि ये 5000 साल का जो चक्र है उसमें हमारे भी कितने जन्म, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड के बराबर है, और इस लास्ट एपिसोड में अब जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ अवश्य है ही है। इसलिए बुरा कुछ भी है ही नहीं, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। कभी तो दुखी नहीं होंगे ना, कि गुस्सा नहीं आएगा ना, क्या आएगा, क्या कहेंगे, आएगा गुस्सा भगवान के ऊपर गुस्सा आएगा नहीं आएगा। अब ये 5000 साल का चक्र कैसे चलता है उसको दिखाया है स्वास्तिक के रूप में, और ये क्लॉकवाइज चलता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्युग यहाँ यानी जहाँ संपूर्ण सत्यता का युग था, जहाँ स्वास्तिका का हाथ इस पोजीशन में था अर्थात आशीर्वाद। क्योंकि ये चक्र कब आरंभ हुआ ये तो पता नहीं है, ये नित्य चलता रहता है, लेकिन उसका पहला पहर सत्युग को माना जाता है। जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है, इसी तरह ये काल चक्र का भी पहला पहर सत्युग को माना जाता है। कि जहाँ संपूर्ण सत्यता का समय था, दूसरे शब्द में उसको कहते हैं सूर्य वंश, कि जैसे सूर्य की कलाएं कभी कम जास्ती नहीं होती है ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। संपूर्णता की अवस्था में थे, जिसके लिए बाइबल में बहुत सुंदर बताया गया है कि उस समय ये सृष्टि कैसी थी। तो जेनेसिस चैप्टर 1 में ये बात बताई है कि भगवान ने जब ये पहला पहर रचा था तो कैसा था ये समय, तो उसमें कहा गया है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। भावार्थ ये है कि सत्युग से पहले कलयुग था और कलयुग के अंदर मनुष्य थे, तो वही मनुष्य को अपनी कृति में बनाया अर्थात भगवान भगवती के रूप में बनाया। तब कहा जाता भगवान भगवती अनेक है लेकिन भगवान एक है, गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी बट गॉड इज वन, परमात्मा एक ही है, भगवान भगवतियां जो नेक्स्ट टू गॉड है वो अनेक है। तो मनुष्य को ही आशीर्वाद दे करके भाग्य विधाता ने ऐसा भाग्य प्रदान किया जो भगवान भगवती वो कहलाए। वो दुनिया कैसी थी, वो दुनिया के जहां संपूर्णता थी, जहां आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप में थे, सुकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, जहां प्रकृति पशु पक्षी और इंसान सब पवित्र सतो प्रधान स्वरूप में थे, सुख शांति का राज्य था और जहां हर प्रकार से समृद्धि इस पृथ्वी के ऊपर छाई हुई थी, जहां परमात्मा ने उन पवित्र आत्माओं को इन संसार में भेजा और कोई न कोई वो देवी या देवता का स्वरूप धारण कर लेते हैं जो सोले कला संपूर्ण थे, उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, तो श्री नारायण के साथ हमें पात्र निभाती है। जैसे विज्ञान के अंदर साइंस में भी थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल यही कहता है लॉ ऑफ एंट्रोपी, और लॉ ऑफ एंट्रोपी डिफाइन करता है, उसकी व्याख्या यही करता है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज, हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है और सुव्यवस्थितता से अस्त व्यस्त होती है, कोई भी चीज पहले नई होती है, नई से पुरानी अपने आप हो जाती है, कोई बनाता नहीं है, ये समय के अंतराल में पुरानी होनी ही है, ये कुदरत का नियम है। पुराने को नया बनाना पड़ता है लेकिन नए से पुराने अपने आप होती है, मकान नया है पुराना अपने आप हो जाता है, एक कपड़ा बाजार से ले आओ नया है कबाट में रख दो 10 साल के बाद निकालो क्या कहेंगे नया है, नहीं 10 साल पुराना, अगर यूज भी नहीं किया पुराना कैसे हो गया, तो होना ही है, नियम है ये कुदरत का, हर चीज ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है, पानी की गति भी ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आती है, नीचे से ऊपर मोटर लगा के चढ़ाना पड़ता है। इसी तरह कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रहती है, संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहती है, एक घड़ी, दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की तरफ की यात्रा आरंभ हो जाती है, तो कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रहती है, ऐसे ही आत्माओं की स्थिति भी सदा काल एक ही स्टेज में नहीं रहती है, परिवर्तन कुदरत का नियम है और वो परिवर्तन होता चला आ रहा है। और इस तरह से तीसरा युग आता है जिसको कहा द्वापर, जहां ये स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाता है और इस पोजीशन में आ जाता है, सत्युग में इस पोजीशन में था, द्वापर में इस पोजीशन में आ गया, ये पोजीशन माना आशीर्वाद और ये पोजीशन माना मांगना। द्वापर जहां से दो पुर आरंभ हुए, जहां से द्वैत भावना आरंभ हुई, सत्युग और त्रेतायुग अद्वैतता का राज्य था, परंतु जहां से द्वापर आरंभ हुआ द्वैत भावना की प्रवेशता हुई, राइट हैंड को कहा जाता राइटियसनेस, तो जब स्वास्तिक का हाथ भी राइट हैंड के तरफ था संसार में राइटियसनेस थी, जब लेफ्ट हैंड पर टर्न हो गया यानी अनराइटियसनेस आरंभ हो गई, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा। और जब असत्य मिक्स होने लगता है तो ईश्वर कलह क्लेश उत्पन्न होता है, जिस कारण ईश्वर को पुकारते हैं हे प्रभु शांति दो, सुख दो, आनंद दो। और जो देवी देवताएं होकर के गए उन्हीं देवी देवताओं की पूजा आरंभ होती है। जैसे आज की दुनिया में भी देखते कहीं ऐसे महान संत है, उनके भी मंदिर बन गए हैं और उसकी पूजा लोग करते हैं कि हमसे तो श्रेष्ठ थे ना। इसी तरह द्वापर युग में जो आत्माएं आई उनसे श्रेष्ठ वो देवी देवताएं सत्ययुग और त्रेता युग में होके गए तो उनकी पूजा आरंभ कर दी। लेकिन जो आत्म स्थिति में स्थित थे वो धीरे धीरे देह अभिमान के वश होने लगे और बुराइयां कमजोरियां आने लगी जीवन के अंदर, तब जाकर शास्त्र बनने लगे, मंदिर बनने लगे, पूजा पाठ के रीत रसम आरंभ होने लगी और देवी देवताओं की पूजा करने लगे। और इस तरह ये संसार का चक्र आगे बढ़ता है। और ऐसे समय पर इस संसार के अंदर जब द्वापर युग है तो भारत के अंदर तो अनेक महान आत्माएं संसार में आ गए, लेकिन भारत से बाहर विश्व के अंदर तीन महान धर्म पिताएं आते हैं जो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। इस तरह ये तीन महान धर्म पिताएं आते हैं जो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हर एक ने यही कहा गॉड इज वन, परमात्मा एक है। हम तो परमात्मा के पैगंबर हैं, पैगाम लेकर के आए। लेकिन पैगाम हरेक का एक जैसा ही था। फिर जिस समाज में वो गए उस समाज की रचना को देखते हुए उनके संदेश या प्रचार आरंभ हुए, इसलिए वो प्रचार अलग अलग है। जहां पर इब्राहिम गए थे उस समाज के स्थिति कैसी थी, तो उस समाज के अंदर मनुष्य जीवन के लिए कोई सिद्धांत नहीं थे। तब उन्होंने जीवन जीने के कुछ सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, प्रिंसिपल्स टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। परंतु अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको नहीं समझा। इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध गए थे वहां के समाज की रचना कैसी थी, तब उन्होंने दो बातों को देखा और इसी आधार पर उन्होंने अपने प्रचार आरंभ किए। सबसे पहली बात देखी कि दया नाम की चीज नहीं है मनुष्य अंदर, और दूसरा उनके कर्म भ्रष्ट होने लगे। तब महात्मा बुद्ध ने अपने प्रचार में यही कहा, दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, कर्म ही धर्म है। परंतु अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं, और इसलिए दुनिया के अंदर सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहां होते, उन्हीं देशों में होते हैं जहां महात्मा बुद्ध का प्रचार अधिक रहा है। इसी तरह जहां क्राइस्ट गए थे वहां के समाज की व्यवस्था कैसी थी, उन्होंने भी दो बातों को देखा और उसी पर अपना प्रचार आरंभ किया। और वो दो बातें कौन सी थी, तो कहा वहां पर मनुष्य के अंदर इतना झूठ व्याप्त होने लगा था और मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत उत्पन्न हो गई थी। तभी क्राइस्ट ने अपने प्रचार में कहा, प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उस बात को समझा नहीं। प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया? एक जिंदा व्यक्ति को टॉर्चर करके क्रॉस पर चढ़ाना, कितनी नफरत की भावना उनके दिलों में होगी तब ये कर सकते हैं। यानी संसार को दिखा दिया, हमने अपने धर्म पिता को नहीं छोड़ा तो बाकी किसको छोड़ेंगे। और इसलिए जहां पर भी ये गए थे व्यापार बढ़ाने के लिए, लेकिन व्यापार के आधार पर गए, लेकिन उस देश में जाकर क्या किया? झूठ और नफरत की भावना को विकसित किया। और ये विकसित करते ही राजाओं को प्रजाओं को आपस में लड़ाया और सारे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, देश का दो टुकड़ा कर दिया। नफरत के बीज ऐसे बोए कि इतने सालों के बाद भी कोई बात पर समाधान ही नहीं होता है। किस लिए लड़ रहे हैं मालूम नहीं, जिसके लिए लड़ रहे हैं उसका सुख न वो भोग रहे हैं न हम भोग रहे हैं, लड़े जा रहे। भाई भाई लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं। कहने का अभावार्थ, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, आज दुनिया के अंदर 360 लड़ाइयां उन्हीं बॉर्डर्स पर चल रही है जिस देश का दो टुकड़ा हुआ था, या नॉर्थ साउथ हो गया या ईस्ट वेस्ट हो गया, और वहीं चल रहा है। तो सोचो नफरत के बीज कितने गहरे बोए होंगे जो कोई बात पर समाधान ही नहीं होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और सृष्टि नाटक का चौथा भाग आया, जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहाँ हर प्रकार की बुराई अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है, अधर्म उसकी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, हर प्रकार का भ्रष्टाचार पापाचार अत्याचार इस संसार के अंदर कलह क्लेश वाला युग बन जाता है। और ऐसा कलयुग, जिसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं, एक रावण राज्य से कम नहीं है। इसको रावण राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, एक ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, बड़ा बुद्धिशाली था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, दिव्य अस्त्र उसके पास थे। रावण जैसा धनवान कोई नहीं था, सोने की लंका थी पूरी उसकी। और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं था, शिव भक्त था। लेकिन दो बातों की कमजोरी उसके जीवन में आ गई थी, जिस कारण उसका सर्वनाश हुआ। और वो दो कमजोरी कौन सी थी? एक तो अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई थी। ये दो बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। नहीं तो इतना बुद्धिशाली और शक्तिशाली कि प्रकृति के पांचों तत्व को भी वश करके रखा था उसने अपने महल में। कहा जाता कि इंद्र देवता रावण के महल में पानी भरता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था, अग्नि देवता उसके लिए खाना पकाता था। इतनी शक्ति थी और बुद्धि थी उसके पास, लेकिन ये दो बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। ठीक इसी प्रकार आज ये दुनिया भी रावण राज्य से कम नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली और कोई प्राणी नहीं है। आज विज्ञान इतनी चरम सीमा पर है। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई प्राणी नहीं, मिसाइल पावर है उसके पास। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं है, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं है। रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखे तो कैसा दिखता है? जैसे सोने की लंका चमक रही है। इतना ग्लैमर और पंप की ये दुनिया बनती जा रही है। आज मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के पांचों तत्व को अपने घर में बांध के रखे हैं। रखे है कि नहीं रखे है? हाँ? स्विच के अंदर के स्विच चालू करो तो वायु देवता आपको पंखा हिलाने लगता है, नलका खोलो तो इंद्र देवता आपका आपके घर में पानी भर रहा है, गैस चालू करो तो अग्नि देवता खाना पकाने लगता है, कोई चूल्हा फूंकने की तो आवश्यकता नहीं है ना। कहने का भावार्थ कि मनुष्य ने भी इतना शक्ति को हासिल किया है, इतनी बुद्धि को प्राप्त किया है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी आज मनुष्य भी किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? अपने सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी दो बातों की कमी कमजोरी आ गई है। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और चरित्र भ्रष्टता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नैतिक मूल्य उसके जीवन में से खत्म होते जा रहे हैं, आध्यात्मिकता नहीं रही जीवन के अंदर, और उस कारण से मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही होती जा रही है कि वो अपने सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। ये कलयुग जहां हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा पर है, जहां हर इंसान अपने आप को एक बंधन में महसूस कर रहा है, कहां देखो तो व्यक्तियों का बंधन है, कहां देखो तो अपनी बुरी आदतों का बंधन है, बंधन में बनता जा रहा है, मनुष्य अपनी ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बनता जा रहा है और विकारों का गुलाम बन गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय उसका गुलाम बन गया है, और उस गुलामी के कारण उसकी शक्लें तो देखो, कभी टेंशन में है तो कभी डिप्रेशन में है, कभी क्रोध के कारण एकदम लाल होता जा रहा है, कभी देखो तो काम का भूत सवार है, कभी देखो तो क्रोध का भूत सवार है, विकारों के अधीनता वाला जीवन हो गया है। न स्वयं की यथार्थ पहचान है, न परमात्मा की यथार्थ पहचान है, और इसलिए परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहा है? प्रकृति के पांच तत्वों में ढूंढ रहा है। कहाँ देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो अग्नि की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो पशुओं की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो कोई पत्थरों की वृक्षों की पूजा कर रहा है, किस किस की पूजा में लगा हुआ है। परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, इसीलिए आज ये हालत हो गई है इंसान की। लेकिन जब ये बात कहते हैं कि अब जब ऐसी अति का समय आ जाता है, अति धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो अति निशानी है अंत की, और अंत निशानी है नई आद की। इसीलिए कहा जाता, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे कलयुग तो अजन छोटा बच्चा है, अभी तो लाखों साल पड़े हैं, अभी थोड़ी पूरा हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार बताते हैं 4,32,000 साल पड़े हैं। अब सोचने की बात है, 4,32,000 साल कलयुग को पड़े हो, तो अभी ही अगर ये स्थिति है तो बुढ़ापे में क्या होगा? नहीं, अभी कलयुग कोई बच्चा नहीं है, थोड़ा आकर बचा है। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और उस गीत में आगे कहा है, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या क्या होगा, वो अंतिम निशानियां वर्णन की हुई है। मैं कोई सारी निशानी वर्णन करने वाली नहीं हूं, लेकिन एक निशानी अच्छी लगती है कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए, तो उसमें कहा गया है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुएं का पानी 1 कुएं में समा जाए, लेकिन 1 कुएं का पानी 4 में नहीं समाएगा, तब समझना कलयुग का अंत है। अब सोचने की बात है कि 4 कुएं का पानी 1 कुएं में समा जाए तो क्या एक का पानी चार में नहीं समाएगा? नहीं, कलयुग में नहीं समाएगा। कि जड़ कुएं की बात नहीं, चेतन कुएं की बात है। क्या आज एक माँ पिता चार बच्चे के पानी को अपने में समा लेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, सेटल करेंगे, शादी करेंगे, नौकरी धंधे लगा देंगे, लेकिन जब एक माँ पिता को समाना आता है तब चार कुएं समा सकते हैं? वृद्धाश्रम दिखाते हैं उनको, या टर्न बनाएंगे तीन तीन मास का, है ना? तो ये कलयुग की हाइट्स है। नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बनती थी? मदर टेरेसा एक ऑर्डिनरी सिस्टर टेरेसा थी, एक मिशनरी स्कूल चलाती थी। वहां से मदर टेरेसा कैसे बन गई? तो कहा जाता है कि एक दिन वो अपनी कुछ बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, और मॉर्निंग वॉक करते करते एक बड़ी दर्द भरी कराहने की आवाज सुनाई दी उसको। चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन बड़ा दर्द भरा कराहने का आवाज था। उस दिशा की ओर गए तो दिखाई दिया कि एक किचड़े के डब्बे में एक आदमी पड़ा है, और लेप्रसी उसको थी, और इस तरह से उस किचड़े के डब्बे में पड़ा था जो हिल भी नहीं पा रहा था, और चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे, इतना खून बह रहा था और चूहे खा रहे थे उसके शरीर को, लेकिन कराहने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा था। ये स्थिति को देखकर मदर टेरेसा का हृदय विदीर्ण हो गया। उसने उस व्यक्ति को बाहर निकाला और पूछा, तू अंदर कैसे चला गया? बड़े दुखी आवाज में उसने कहा, इस बीमारी के कारण जिंदगी भर मैंने दुख देखा, लेकिन आज मेरे बच्चे भी मेरे से तंग हो गए। कल रात को मेरे बेटे ने आकर मुझे किचड़े के डब्बे में फेंक दिया और कहा, मर जा बुढ़ा, मरता भी नहीं है, सबको दुखी करता है। मौत भी कैसी है, इतना आधा शरीर चूहा खा गए फिर भी मुझे मौत नहीं आ रही है। मदर टेरेसा ने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मेरा जीवन इन लोगों के लिए रहेगा। उसने अपने समाज वालों से बात की, समाज वालों ने विरोध किया कि हम इसके लिए यहाँ थोड़ी आए, हमें तो मिशनरी स्कूल चलानी है। वो उस संस्था से अलग हो गई, उस समाज से अलग हो गई, और उसने अपनी एक नई संस्था बनाई कि आज के बाद मेरा जीवन इन लोगों के लिए ही रहेगा जिसका कोई नहीं है। और वहां से वो सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बनी। वो व्यक्ति ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहा, लेकिन मरते वक्त उसने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि सारी जिंदगी मैं दुख के हाथों में पला, आज सुख के हाथ में मर रहा हूं, उससे मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा आगे का जन्म सुखी होगा। ये हाइट्स है कि कलयुग किस गति, किस स्थिति तक पहुंच गया है कि जहां माँ बाप बच्चे को खाने में हिचकिचाते नहीं, और बच्चे माँ बाप को किचड़े के डब्बे में फेंकने से हिचकिचाते नहीं। अब इससे ज्यादा और कलयुग क्या देखना चाहते हैं? हाइट्स है ये कलयुग की। लेकिन तब कई बार कई लोग हमें सवाल पूछते हैं कि तो फिर परिवर्तन को कितना समय बाकी रहा? दुनिया कब बदलने वाली है, कब विनाश होगा? भगवान ने अगर आपको सारा ज्ञान दे दिया होगा फिर तो डेट भी बता दी होगी कि ये दुनिया कब खत्म हो रही है। हा? जानना चाहोगे डेट? फिर दुखी तो नहीं हो जाओगे? हा? हम यही कहते हैं, भगवान ने हमें सारा ज्ञान दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा किया जो डेट नहीं बताई। क्यों? नहीं तो टाइम कॉन्शियस हो जाते थे। आज एक व्यक्ति को अगर कहा जाए कि तेरे पास 24 घंटा है, 24 घंटे के बाद तेरी मौत है, जो करना है वो कर लो, जितना भगवान का नाम लेना है ले लो, कितना भगवान का नाम ले सकेगा? कुछ भी नहीं। एक एक घड़ी बीतती है उसका टेंशन बढ़ता जा रहा है, भगवान का नाम नहीं ले सकता है। उसको कहो चलो भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, जो कुछ तेरे पास है दान करके पुण्य तो कमा ले, कितना दान करेगा? कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद नहीं मरा तो समय पर भरोसा नहीं है उसको। कहने का भावार्थ कि न व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है, न कुछ दान करके पुण्य कमा सकता है। इसलिए भगवान ने यही कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी अब जाने के बाद क्या होना है पता नहीं, लेकिन अपने आप को हर रीति से तैयार रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय जिस गति से चलने लगा है कि ये सृष्टि का महान परिवर्तन निश्चित है ही नहीं है। अभी वैज्ञानिक सबूत भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये दुनिया को ज्यादा समय नहीं है। जिस प्रकार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन का सोर्स वृक्ष कटते जा रहे हैं, ये सब निशानी है कि अब ये दुनिया ज्यादा समय नहीं चलने वाली है। कुछ समय पहले यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, तो उस वक्त उनसे बातचीत होते हुए ये प्रश्न पूछा गया कि जिस प्रकार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हिसाब से मनुष्य को ऑक्सीजन के लिए कितने परसेंटेज फॉरेस्ट होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कम से कम 33% फॉरेस्ट इस दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। हमने उनसे पूछा इस वक्त कितने परसेंटेज वृक्ष है, फॉरेस्ट है, तब उन्होंने कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11% ही है। और अगर ये 9% हो गए तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो दुनिया चलेगी कैसे। तो इसलिए प्राकृतिक असंतुलन जिस तरह से आ रहा है, उससे भी ये बताया जाता है कि अब दुनिया एक महान परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। बड़े से बड़े रूप में भूकंप हो रहे हैं, सुनामी लहरें उठ रही है, बड़े बड़े चक्रवात तूफान आ रहे हैं, और चक्रवात तूफानों के साथ साथ जो कहा जाता वोल्केनिक इरप्शन होने लगे हैं, सिविल वॉर्स होने लगे हैं, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, इन भेदों के कारण जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और जो मिसाइल्स बनाए हुए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बने हैं ना, उसका प्रयोग भी कभी न कभी तो होना है या नहीं होना है। सारा कंप्यूटराइज कंट्रोल है। लोग सोचते हैं कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ ये मेहनत कर रहे हैं कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर न हो, उसके लिए कितनी ट्रीटी साइन करा रहे हैं देशों से। लेकिन कहा जाता है मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। जहां परमात्मा की अब सृष्टि परिवर्तन करने की एक समय आ चुका है, तो कितना मनुष्य इसको खींचने का प्रयत्न करेंगे। आज के समाज की स्थिति को देखते हुए भगवान भी दो बातें सिर्फ कहता है, लेकिन अफसोस आज के समाज के लोग भी उस बात को समझ नहीं पाते हैं। और कौन सी दो बातें कहते हैं? यही कहते हैं आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बात सुनते ना तो लोग क्या कहते हैं, अरे बहन जी सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी, अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है क्या, वो तो ऊपर वाले को मालूम है ना दुनिया कैसे चलानी है, उसकी चिंता हम क्यों करें। परमात्मा के जो आज्ञा है उसको तो पालन करें। लेकिन अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं उस वक्त। कुछ समय पहले हमारा एक कार्यक्रम था, सप्ताह कार्यक्रम था, और सप्ताह चल रही थी, बहुत सुंदर लेक्चर सीरीज चली 7 दिन तक। 7 दिन के बाद प्रश्न उत्तर का सत्र था, अनुभव के लेन देन का सत्र था, काफी लोग आते रहे। लास्ट में जब अनुभव सुनाने का वक्त आया तो एक भाई खड़े हुए और अपना अनुभव सुनाने लगे। कहने लगे कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सातों दिन हमने सुना, इतना सुंदर ज्ञान, इतनी सत्यता उसमें समाई हुई है, इतना लॉजिकली हर बात को एक्सप्लेन किया गया, इतना रैशनल है जो हमारी बुद्धि भी उसको स्वीकार करती है और प्रैक्टिकल है, लेकिन इनकी एक बात के कारण हम उनसे दूर भागते रहे। हमने कहा जब इतना सत्य है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है, फिर कौन सी ऐसी बात थी जो दूर भागने की आई? तो कहा हमको बताया गया था कि भाई बहन बना देते ये लोग। अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसी को भाई बहन बनाने की? हम किसी को भाई बहन नहीं बनाते हैं। जब आप मंदिर जाते थे और भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना हरेक ने की होगी, तुम मात पिता हम बालक तेरे, किया है नहीं किया है? सभी ने किया है या सिर्फ भाइयों ने किया, बहनों ने कुछ और किया कि मेरे पति के मात पिता सो मेरे सास ससुर, कभी भगवान को कहा? हाँ? तो ये प्रार्थना जब गा रहे थे तब आप कौन बन गए थे? और ये प्रार्थना किसने सिखाई थी? ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी? नहीं, ये प्रार्थना न ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई, न ऐसी कोई बात ब्रह्मा कुमारियां सिखाती है। हाँ, परमात्मा का संदेश अवश्य सुनाती है, समय का संकेत अवश्य बताती है। आज समय का संकेत भी यही है कि आज दुनिया के अंदर नंबर वन पर जो बीमारी चल रही है कौन सी है? एड्स, जिसकी कोई इलाज नहीं है और दिन प्रतिदिन लोग इसके शिकार बनते ही जा रहे हैं। कहने का भावार्थ, समय का संकेत भी हमें कुछ इशारा दे रहा है और उसी अनुसार परमात्मा भी आज्ञा कर रहा है। आज जब प्रैक्टिकल देखो दुनिया के अंदर, न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एक खबर तो हर रोज छपती रहती है, कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, आते हैं रोज कि नहीं आते हैं? जब आप ये समाचार पढ़ते हैं आपको कैसा फील होता है और आपका विवेक क्या कहता है, आने वाले समय में ये खबरें बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। उस वक्त आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। शास्त्र में भी ये बात आती है कि रावण जैसा, रावण इतना शक्तिशाली जिसने श्री राम को युद्ध के लिए चैलेंज कर लिया, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका उठा करके सीता जी ने रख दिया, रावण को चैलेंज कर दिया, हे रावण, इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, इतनी शक्ति है मेरी। कौन सी शक्ति थी सीता जी के पास? पवित्रता की शक्ति थी। और यही पवित्रता की शक्ति से वो एक कवच तैयार कर सकी थी, जिस कवच के अंदर वो सुरक्षित रही, जिस कारण रावण जैसा रावण भी उसको स्पर्श नहीं कर सका। आज की दुनिया में ऐसे अनेक रावण, अनेक कीचक इस दुनिया में हो गए हैं। और उस समय आत्मरक्षा का साधन कौन सा है? इसीलिए भगवान जिसको कहते हैं जानी जाननहार, जो सब कुछ जानता है, वो विधि बताता है कि आने वाले समय में अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो तो ये कवच तैयार करो। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु, तुम तो सब कुछ जानता था, हमें बताया क्यों नहीं? इसीलिए भगवान कह रहा है। कई लोग हमें कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अपनी वृत्तियों को सप्रेस करते हैं और प्राकृतिक नियम से विरुद्ध चलते हैं, नहीं, सप्रेस नहीं करते हैं। समय का जो संकेत है उस समय के संकेत को समझते हुए हर बात की जो धारणा की है बड़ी समझदारी से की है। इसलिए हमने अपने वृत्तियों को सप्रेस नहीं किया है और न ही इसीलिए उसका कोई दुष्प्रभाव हमारी मानसिकता के ऊपर आ रहा है, लेकिन सब सुव्यवस्थित रीति से अपने जीवन को चलाने लिए सक्षम हो गए हैं। कहने का भावार्थ यही है कि समय की पुकार यही है कि आत्म शुद्धिकरण करो। कई लोग हमें कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां किसी के घर का खाना नहीं खाती है, दूसरे को अछूत समझती है क्या? अछूत समझने की बात नहीं है, लेकिन आज प्रैक्टिकली आपके घर में कोई छोटा बच्चा या पोता होता है, जब उसको स्कूल भेजते हैं तब क्या सिखा के भेजते हैं? कोई तुझे चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, बिस्किट दे, खा लेना चाहिए? नहीं। क्यों? दूसरे अछूत है। इसलिए आप भी समय को अच्छी तरह जानते हो कि आज वो समय आ गया है जहां तंत्र मंत्र जंत्र का प्रयोग हो रहा है। व्यक्तियों की अपने दुश्मनी, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए कुछ न कुछ खाने में मिला करके खिला देते हैं, जिससे वो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। आप लोग समाज में अधिक रहते हो, हमारे से ज्यादा आप लोगों के पास बातें आती है। आप लोग जैसे ही हमें आके सुना देते हैं कि बहन जी आजकल किस पर भरोसा करें? इसीलिए परमात्मा को भी अपने बच्चों से अधिक प्यार है, जैसे आपको अपने बच्चों से प्यार है। आप उनको सिखाते हो कहीं का खाना नहीं है, ऐसे भगवान को भी तो अपने बच्चों से प्यार होगा कि नहीं होगा? इसीलिए भगवान कह रहा है करना न करना आपके ऊपर है, फिर भगवान को दोष नहीं देना कि तुमने हमको बताया क्यों नहीं। इसलिए भगवान कह रहा है, ठीक है ना? तो ये है काल चक्र का गुह्य रहस्य।